ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। श्लोक संख्या 32। अतः परम यत् अव्यक्तम् अव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सह जीवः यत् पुनः पुनः भवः। अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढ़गुणब्रह्मितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढ़गुणब्रह्मितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढ़गुणब्रह्मितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। परं यदव्यक्तम् अव्यूढ़गुणब्रह्मितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढ़गुणब्रह्मितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। यदपरं यदव्यक्तम् अव्यूढं गुणब्रह्मितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भ्रमः। अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढगुणब्रह्मितम्
adrishtashrutavastutvat
sajivo yat punarbhavah. Mataji, could you say? Param yadavyaktam avyudha guna brahmitam adrishtashruta vastutvat sajivo yat punarbhavah. Param yadavyaktam avyudha guna brahmitam adrishtashruta vastutvat sajivo yat punarbhavah. Atah param yad avyaktam avyudha guna brahmitam adrishtashruta vastutvat sajivo yat punarbhavah. Atah yah param pare yat jo avyaktam aprakat avyudha bina kisi prakar ke roop ke guna brahmitam गुणों से प्रभावित अदृष्ट अदृश्य अनदेखा अश्रुता अनसुना वस्तुत्वात् वैसा होने से सह वह जीवः जीव यत् जो पुनः भवः बारंबार जन्म ग्रहण करता है. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. अनुवाद: रूप की स्थूल धारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त रहता है. जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता. तात्पर्य: जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत को भगवान का विराट शरीर मान लिया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है जिसे न तो देखा जा सकता है न सुना या प्रकट किया जा सकता है. लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म धारणाएं जीवों से संबंध हैं. जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है. ज्यों ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक कर्मों का अस्तित्व मिट जाता है. वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है न ही उसके विषय में सुना जाता है. यहां तक कि प्रगाढ़ निद्रा के समय जब वह स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है. अतएव जीव के चले जाने या मरने का यह अर्थ कदापि नहीं कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है, वह यही रहता है, अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों होता. निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म. उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी धारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना नित्य आध्यात्मिक रूप होता है, जो भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के इस तीसरे अध्याय में श्रील सूत गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुके हैं, यथा तीन पुरुष अवतार और 22 अन्य अवतार, और बाद में वो यह भी कह चुके हैं कि भगवान के अवतार असंख्य हैं और ये सारे अवतार दिव्य हैं, चिन्मय हैं। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे अवतारों में प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं, आत्ममायया। उनका शरीर भौतिक नहीं होता। और फिर 29वें श्लोक में इस विषय का वो सारांश देते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों के बारे में श्रवण करने से हम समस्त भौतिक कल्मशों से, बंधनों से मुक्त होंगे। इसे फल श्रुति कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत में अक्सर देखा जाएगा। अनेक अध्यायों के पश्चात सुखदेव गोस्वामी या कभी कभी सूत गोस्वामी बतलाते हैं कि इस कथा का श्रवण करने का लाभ इस प्रकार से है। तो जो कथा श्रवण करने का लाभ है उसे फल श्रुति कहते हैं, श्रुति का फल या लाभ। तो जब हम भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन सुनते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है। और संसार में रहने के कारण जो हमारे हृदय में अनादि काल से तरह तरह के बुरे वृत्तियां, विचार आदि हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे और शुद्ध भक्त होके हम भगवान के धाम में जा पाएंगे। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो तत्वतः ये जान लेता है कि मेरे कार्यकलाप और मेरा जन्म ये भौतिक नहीं है, लौकिक नहीं है, ये दिव्य है, चिन्मय है, ये व्यक्ति निश्चित ही मेरे पास लौट के आएगा, मेरे धाम को प्राप्त होगा, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो यदि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप और लीलाओं के बारे में श्रवण करने से हम इस भौतिक सृष्टि से परे हो जा सकते हैं और आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये प्रमाण है या सबूत है कि भगवान के कार्य, भगवान के रूप आदि ये सारे दिव्य हैं, ये भौतिक नहीं है। यदि भगवान का शरीर भौतिक होता, भगवान के कार्य भी हमारे जैसे कार्य होते जो भौतिक हैं, तो फिर उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं के बारे में सुनने से हम इन भौतिक कलमशों से मुक्त कैसे हो सकते थे। तो तात्पर्य या निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण से जो भी संबंधित है, उनके रूप, गुण, लीला इत्यादि सब दिव्य हैं। अब पहले सूत गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं इसी स्कंद में, दूसरे अध्याय में 11वां श्लोक, जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें कि परम सत्य की व्याख्या की जाती है। वदन्ति तत् तत्वविदस् तत्त्वं यज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। इस श्लोक में परम सत्य क्या है और परम सत्य के स्तर कौन से हैं, इनका ज्ञान दिया गया है। और परम सत्य को ज्ञानम अद्वयम या अद्वयम अद्वय ज्ञानम कहके संबोधित किया गया है। अद्वय अर्थात जो दो नहीं है, जिनका कोई भाग नहीं किया जा सकता, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जो सदैव एक रहते हैं। और ऐसे ज्ञानम या सत्य को अलग अलग तरह के साधक जो अलग अलग प्रकार के योग पद्धतियों का के ऊपर चल रहे हैं, वो अलग अलग दृष्टि से समझते हैं। तो जो ज्ञान योग के पथ को स्वीकार करते हैं, उनके लिए ज्ञानम अर्थात निराकार ब्रह्म, तो वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं इस आशा से कि वो इस निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। और ऐसे अष्टांग योगी होते हैं जो अपने हृदय में स्थित परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए अद्वय ज्ञान अर्थात परमात्मा। और इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं जो भक्ति योग के पथ पे चलते हैं, उनके लिए अद्वय ज्ञानम अर्थात श्री कृष्ण, जिनसे कि परमात्मा, निराकार ब्रह्म आदि सब उत्पन्न होते हैं। तो इस श्लोक में या इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में, सूत गोस्वामी ने भगवान की व्याख्या कर ली है, क्योंकि भगवान परमात्मा और ब्रह्मा, तो भगवान की व्याख्या करने के बाद जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि श्री कृष्ण ही भगवान स्वयं है, स्वयं भगवान, एते चांश कलह पुंसा श्लोक में श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, और भगवान की भी श्रेणियों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो भगवान शब्द की व्याख्या करने के बाद अब परम सत्य के जो अन्य दो स्तर हैं, परमात्मा और निराकार ब्रह्म, इनकी व्याख्या करने जा रहे हैं। परंतु इसके पहले वो और एक संशय का निवारण करना चाहते हैं। तो निराकार ब्रह्म परमात्मा की चर्चा करने के पहले अब उन्होंने विषय उठाया है विराट रूप का। तो ये विराट रूप क्या है, इसकी चर्चा वो 30वें श्लोक में कर चुके हैं, अर्थात पिछले श्लोक में। विराट रूप ये संसार या भौतिक ब्रह्मांड का रूप है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य चिन्मय रूप है, फिर भी ऐसे अनेक लोग होते हैं जो अपने मन में या अपने बुद्धि में इस बात को बिठा नहीं सकते कि भगवान का रूप एक चिन्मय रूप है। उनको आध्यात्मिक स्तर का कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई समझ है, कोई साक्षात्कार नहीं है। तो जब ऐसी बात की जाती है कि भगवान का दिव्य रूप है, उनका आकार है, तो उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका साक्षात्कार भौतिक चीजों तक, तत्वों तक सीमित है। इसीलिए वो भगवान के रूप को भी इन जड़ पदार्थों के बीच में ही देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये विराट रूप की कल्पना है। तो ये विराट रूप ये ब्रह्मांड का रूप है जो कि काल्पनिक रूप है, सच्चा रूप नहीं है। काल्पनिक रूप किस तरह से, कल्पना की जाती है कि चांद और सूरज उनके आंखें हैं, जो पहाड़ हैं वो उनके शरीर के ऊपर हड्डियां हैं, और जो पेड़ हैं उनके शरीर के ऊपर रोम हैं, और ब्रह्मलोक आदि है वो उनका सर है, पाताल लोक आदि उनके चरण हैं। तो ऐसे कल्पना की जाती है। वास्तव में भगवान का शरीर ऐसे नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि भगवान के दिव्य रूप की कल्पना नहीं कर सकते हैं अपने मन में, उन लोगों के लिए ऐसे कल्पना की जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि बादल में भी हम किसी चेहरे को देखते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो उसका चेहरा उसमें भी दिखता है बादल में। ये काल्पनिक रूप है, वास्तव में उस व्यक्ति का चेहरा वहां पर नहीं है, लेकिन एक आरोप है। तो ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के ऊपर एक आरोप है रूप का, और ये काल्पनिक रूप को विराट रूप या विश्व रूप कहते हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नवसुखिया है, जो साक्षात्कार में आगे बढ़े हुए नहीं है। श्रील प्रभुपाद भी भगवद गीता के तात्पर्यों में समझाते हैं कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी उपासना चल रही है दुनिया में, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपासना करे या न करे, उसकी उपासना भगवान की ही उपासना है, परंतु अधिकतर ये उपासना सही तरह से नहीं की जाती है। इसलिए भगवान ऐसे उपासना को हमें करने के लिए नहीं कहते हैं। अविधि पूर्वकम, ये विधि के अनुसार नहीं किया जाता है, इसलिए ये सही उपासना नहीं मानी जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के पांच प्रकार के उपासक होते हैं। एक है वो जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के दिव्य आध्यात्मिक रूप को जानते हैं और बड़ा आकर्षण उस रूप के प्रति है और उस रूप की सेवा भी करते हैं, तो ये है महात्मा लोग। महात्मानस्त माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। ऐसे भगवत गीता में वर्णन करते हैं कि ये महात्मा लोग जो होते हैं उनकी दिव्य शक्ति का आश्रय लिए होते हैं, तो इनकी भक्ति शुद्ध होती है और ये अच्छी तरह से भगवान परमात्मा ब्रह्म तीनों का साक्षात्कार कर चुके हैं। इनसे निम्न श्रेणी में है सकाम भक्त, जो भक्ति करते हैं या भगवान के पास जाते हैं परंतु कामनाओं से उनका हृदय भरा हुआ है, इसलिए वो शुद्ध भक्त नहीं कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि चार प्रकार के सुकृतिन होते हैं, जो कि उनके पास आते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो अर्थार्थी या कोई भौतिक लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं, तो ये सुकृतिन कहलाते हैं, शुद्ध भक्त नहीं कहलाते। फिर इसके बाद तीसरे श्रेणी में वो लोग हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ज्ञान योगी विशेष करके और अष्टांग योगी भी कभी कभी। चौथे प्रकार के उपासक हैं वो जो कि देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और पांचवे प्रकार के उपासक वो हैं जो विश्व रूप की उपासना करते हैं। तो पहले चार प्रकार के जो उपासक हैं इनके बारे में तो हम समझ सकते हैं कि उपासना करते हैं, परंतु पांचवे प्रकार के उपासक ये कैसे हैं, विश्व रूप की उपासना। हाँ, जो समझते हैं कि सृष्टि के परे कुछ है ही नहीं, यही भगवान है, यही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं, ये भी एक प्रकार के उपासक है। सृष्टि को ही सर्वस्व मानते हैं, इसलिए विराट रूप की उपासना में और अन्य उपासनाओं में अंतर है। देवी देवताओं की उपासना भी आध्यात्मिक नहीं मानी जाती, कम से कम जो निराकार भगवान का स्वरूप होता है वो आध्यात्मिक तो है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के दूसरे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि ये भगवान परम सत्य के तीन स्तर हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो जो महात्मा हैं, सकाम भक्त हैं और निराकारवादी हैं, उनकी उपासना कम से कम आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। शुद्ध भक्त पूरी तरह से जुड़ गए हैं, सकाम भक्त जोड़े हैं लेकिन एक पैर संसार में भी रखा है उन्होंने, और निराकारवादी हैं वो परम सत्य की सही पहचान नहीं जान सकते। तो देवी देवता की उपासना करने वाले लोग इनको अंग और पूर्ण शरीर में भेद नहीं पता है। जैसे कोई व्यक्ति हाथ को शरीर मान बैठे, पैर को शरीर मान बैठे, तो फिर ये ठीक ज्ञान नहीं है। कोई व्यक्ति शाखा को ही पूरा वृक्ष मान बैठे तो ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। अवश्य हाथ शरीर का अंग है, शाखा वृक्ष का अंग है, परंतु हाथ पूर्ण शरीर नहीं है, शाखा पूर्ण वृक्ष नहीं है। तो ये देवी देवतागण श्री कृष्ण के अंश हैं। तो जो लोग अंश को ही पूर्ण मानते हैं उनका भी ज्ञान सही नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इनकी उपासना को अविधि पूर्वकम कहते हैं। सही विधि से उपासना नहीं कर रहे हैं ये लोग। और तो अंतिम उपास प्रकार की उपासना करने वाले जो विश्व रूप के उपासक हैं, ये उपासक आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल बढ़े हुए नहीं होते हैं। तो जब तक कि ये लोग इस तैयारी में नहीं आए अपने आध्यात्मिक जीवन में कि वो भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार करें, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऐसी एक कल्पना की जाती है विराट रूप की। और इस विराट रूप का वर्णन श्रीमद् भागवत, भगवद गीता जैसे ग्रंथों में पाया जाता है। तो फिर ये प्रश्न आता है कि विराट रूप भी ये भगवान का रूप यदि माने तो फिर क्या यह भी आध्यात्मिक है? नहीं, ये भौतिक है। भगवान श्री कृष्ण के जो विभिन्न अवतारों का वर्णन सूत गोस्वामी पहले कर चुके हैं, इन समस्त अवतारों का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, दिव्य और चिन्मय है। तो सूत गोस्वामी के मन में ये बात आई कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के लोग सोचें कि जिन अवतारों का वर्णन मैंने कर लिया है तो भगवान का विराट रूप भी उसी प्रकार का एक रूप है, ये भी एक भगवान का अवतार है, कहीं लोग ऐसा न माने। इसलिए इन अवतारों का वर्णन करने के बाद अब सूत गोस्वामी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ये विराट रूप है, इन अन्य अवतारों की तरह नहीं है। इसलिए जब उन्होंने 22 अवतारों का वर्णन किया उसमें विराट रूप का नाम नहीं लिया। कहीं भी श्रीमद् भागवत में जब अवतारों का वर्णन किया जाता है, दूसरे स्कंद में भी और आगे भी, विराट रूप का नाम नहीं आता है, क्योंकि ये अन्य अवतार जो हैं, इनका शरीर सच्चिदानंद होता है, चिन्मय होता है। और दूसरी ओर ये विराट रूप, ये रूप या ये शरीर तीन गुणों से अर्थात सत्व, रजस, तमस और अन्य भौतिक तत्वों से बना हुआ है, जो कि महत्त्व से शुरू होकर पृथ्वी तक जितने भी तत्व हैं उन सब से ये विराट रूप बना हुआ है। तो विराट रूप चिन्मय नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, ये भौतिक है, इसलिए इस रूप को अवतारों में नहीं गिना जाता है। तो ऐसे स्पष्ट वर्णन करने के बाद अब 31वें श्लोक में फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी ऐसे एक झूठा आरोप भी लगाया जाता है। लोग इस रूप को भगवान समझते हैं परंतु ये गलत धारणा है। वो दृष्टांत देते हैं दो, जैसे आसमान को या हवा को हम देख नहीं सकते हैं, परंतु बादलों के कारण, सूर्य के कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है। या कभी कभी हवा को न देखते हुए भी जब हवा में धूल रहती है और धूल उड़ रही होती है तो हम सोचते हैं कि हम हवा को देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम कभी कभी बादलों को देखकर सोचते हैं कि हम आसमान देख रहे हैं, या धूल को देखकर हम सोचते हैं कि हम हवा को देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से विराट रूप ब्रह्मांड को देखकर हम सोचते हैं हम भगवान को देख रहे हैं। जिस प्रकार से धूलि हवा में स्थित है और इसलिए उसे हम हवा समझते हैं, जिस प्रकार से बादल आसमान में स्थित है इसलिए हम उसे आसमान समझते हैं, उसी तरह से ये ब्रह्मांड भगवान में स्थित है इसलिए हम उसे भी भगवान समझते हैं, इसे भी हम विराट रूप कह के भगवान का रूप मानते हैं। श्रील प्रभुपाद पिछले श्लोक में उदाहरण दे चुके हैं कि राष्ट्रपति जब एक गाड़ी में बैठता है, वो गाड़ी में चलता है तो गाड़ी को देखकर हम कहते हैं राष्ट्रपति जा रहे हैं, हम राष्ट्रपति को नहीं देख रहे हैं, राष्ट्रपति की गाड़ी को देख रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं राष्ट्रपति जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति को नहीं देख रहे हैं, तो राष्ट्रपति अभी गाड़ी में बैठे हैं इसलिए राष्ट्रपति को गाड़ी बुलाते हैं हम। हम इस समय भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड भगवान में है, इसलिए ब्रह्मांड को भगवान कह के बुलाते हैं। ऐसे तर्क सुत गोस्वामी कहते हैं, बहुत सुंदर बात, गहरी बात है। और इस श्लोक में, 32वें श्लोक में सुत गोस्वामी बताते हैं कि विराट रूप तो भगवान के या ब्रह्मांड के स्थूल रूप का परिचय है, परंतु इसके अतिरिक्त भी एक सूक्ष्म रूप है। ब्रह्मांड का, विराट रूप का भी एक सूक्ष्म रूप है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि इसका एक सूक्ष्म रूप है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि जैसे जीवात्मा का एक भौतिक शरीर होता है, स्थूल शरीर, लेकिन स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। अब जब व्यक्ति अपने आप को स्थूल शरीर मान लेता है तो ये एक मिथ्या उपाधि है, वो आत्मा ये शरीर नहीं है, फिर भी माया के द्वारा वो अपने आप को ये स्थूल शरीर मान लेता है, तो ये मिथ्या उपाधि है। तो सूक्ष्म शरीर भी एक मिथ्या उपाधि है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ। तो यह प्रश्न आ सकता है कि जब ये एक मिथ्या उपाधि पहले से है स्थूल शरीर, तो दूसरे मिथ्या उपाधि की क्या आवश्यकता है? क्यों भगवान ने ऐसे बनाया? इसका उत्तर है कि एक स्थूल शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में जाने के लिए सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर में हमारे पूर्व जन्मों के इच्छाएं, विचार, अनुभव, कर्मों के फल आदि निवास करते हैं, इसलिए स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ती, सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार से कि यहां जीव को एक स्थूल शरीर के साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, भौतिक, जो दोनों भौतिक होते हैं और आत्मा से भिन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये स्थूल विराट रूप के अलावा इस ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप भी है। स्थूल विराट रूप और सूक्ष्म विराट रूप, ये जब विराट रूप की बात करते हैं तो अक्सर ये स्थूल विराट रूप की बात करते हैं, सूक्ष्म विराट रूप की बात हम अक्सर नहीं करते हैं, लेकिन इस बात का स्पष्टीकरण प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में भी शुरुआत में ही कर रहे हैं। वो कहते हैं, जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत को भगवान का विराट शरीर मान लिया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर कि कोई आकार का, कोई आकार नहीं दिखाई पड़ता, कोई रूप दिखाई नहीं पड़ता, कहीं से इसको हम, इसका प्राकृत्य नहीं देख सकते, ना सुन सकते, ना इसका अनुभव कर सकते हैं, परंतु ये है। जैसे कि हमारे स्थूल शरीर के अलावा एक सूक्ष्म शरीर है, और हम ये शरीर नहीं है, न तो स्थूल शरीर है, न ये सूक्ष्म शरीर है, हम आत्मा है। ठीक उसी प्रकार से भगवान वास्तव में न तो स्थूल विराट रूप है, न सूक्ष्म विराट रूप है, उनका रूप निराला है, अलौकिक है, दिव्य है, जो इससे भिन्न है। ये भौतिक शक्ति, ये भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति है, लेकिन भगवान का रूप भौतिक नहीं है। तो दो प्रकार की कल्पनाएं हैं, गलत कल्पनाएं या गलत धारणाएं या भ्रम। एक, भगवान के शरीर को भौतिक समझना, और दूसरा अपने आप को भौतिक शरीर समझना। ये दोनों प्रकार के भ्रम या मिथ्या कल्पनाओं की चर्चा यहां सूत गोस्वामी इस श्लोक में करते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के अलावा भगवान का अस्तित्व है। तो भगवान न ये स्थूल शरीर है, स्थूल विराट रूप है, न वो सूक्ष्म विराट रूप है, जिस तरह से आत्मा न तो स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है। फिर धीरे धीरे आगे चल के अब अगले श्लोक में सूत गोस्वामी बताएंगे कि कैसे इन दोनों स्थूल और सूक्ष्म विराट रूपों के अतिरिक्त भगवान का निराकार रूप है, निराकार स्वरूप ब्रह्म, और उसके बाद फिर परमात्मा का वर्णन करेंगे। ऐसे सूत गोस्वामी ने बहुत गहराई से भगवान, ब्रह्मन और परमात्मा इन तीनों का वर्णन किया है, जो ज्ञानम अद्वयम है। तो श्रीमद् भागवत में इतना गहरा ज्ञान दिया हुआ है, तो इसको जानने से फिर हमें और किसी ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रसंग का निष्कर्ष ये है, जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम भाग में कहते हैं कि इन समस्त भौतिक रूपों के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण का जो आध्यात्मिक रूप है वो निराला है। भगवान के कई रूप हैं, अनेक विस्तार हैं जो आध्यात्मिक जगत में स्थित होते हैं, जैसे कि नारायण स्वरूप बलराम जी हैं स्वयं, साथ साथ में नरसिंह देव, वामन देव इत्यादि, ये सब चिन्मय रूप हैं। तो कहीं हम ऐसी गलती न करें कि उनके दिव्य शरीरों को हम भौतिक मान लें। तो सूत गोस्वामी इस बात को स्पष्ट करना चाहते थे कि विराट रूप को हमें भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए। आगे चल के दूसरे स्कंद में भी विराट रूप की चर्चा और भी विस्तार में होगी, परंतु मुख्य बात यहाँ है, ये है कि भगवान श्री कृष्ण का रूप, मूल रूप दिव्य है, सच्चिदानंद है, और इसी रूप की उपासना हमें करनी चाहिए। विराट रूप की उपासना यद्यपि भगवान से अभिन्न है, जिस तरह से शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, फिर भी विराट रूप की उपासना करने से हमें भक्ति नहीं मिलेगी, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, हमें भौतिक जगत से मुक्ति नहीं मिलेगी, भौतिक कल्मश हमारे हृदय में नष्ट नहीं हो जाएंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप की सेवा करने से मुक्ति हो जाएगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा, प्रेम मिल जाएगा भगवान के प्रति। तो यद्यपि ये भगवान का एक रूप माना जाता है, फिर भी उपासना करने योग्य नहीं है बुद्धिमान लोगों को। उपासना करने के लिए योग्य रूप तो केवल भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप है, और बड़ी कृपा करके वही भगवान हमारे सामने अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि प्रतिदिन हम उनका दर्शन कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, और हमारा मन उनके विराट रूप की ओर कहीं भटक ना जाए, देवी देवताओं के रूप के प्रति भटक ना जाए, निराकार के प्रति भटक ना जाए, ताकि ये रूप जो दिव्य रूप है हमारे मन में सदैव स्थित रहे। यही हमारे जीवन की परिपूर्णता है और सफलता है। हम जितने भी साधन भजन के कार्य करते हैं, जिस कार्यक्रम को श्री प्रभुपाद ने बनाया है, इसका उद्देश्य एक ही है कि इस सुंदर रूप के प्रति हमारा पूरी तरह से आकर्षण हो और प्रेम हो। अन्य किसी चीज से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई लगाव नहीं है। यही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है, यही ध्येय है, सर्वस्व है। परंतु भक्त भक्ति केवल भावुकता से नहीं करता, ज्ञान में स्थित होता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि यद्यपि भक्ति का पथ भक्ति का है, ज्ञान का नहीं, फिर भी भक्ति के लिए जो ज्ञान आवश्यक है वो प्राप्त तो करना ही चाहिए, नहीं तो हम भक्ति को कुछ और ही समझ बैठेंगे। विशेष करके इसे संबंध ज्ञान की आवश्यकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए तीन स्तर होते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान में वैसे हमें तीन चीजों को कम से कम जानना है, एक है भगवान, दूसरे हैं जीव और तीसरे हैं सृष्टि, और तीनों के बीच में संबंध क्या है। हमें भगवान के रूपों को जानना है, तत्व को जानना है, हमें सृष्टि क्या है ये भी जानना है, और जीव क्या है ये भी जानना है। और इन तीनों के बीच में जो संबंध क्या है, जीव का संबंध सृष्टि के प्रति, जीव का संबंध भगवान के प्रति, भगवान का संबंध सृष्टि के प्रति, ये सब जान लेना है। जब संबंध ज्ञान में हम स्थित हो जाएंगे अच्छी तरह से, तो हम भक्ति मार्ग में कहीं भटक नहीं जाएंगे, हम किसी गलत चीज को भक्ति नहीं मान बैठेंगे। नहीं तो ऐसे देखा जाता है कि कई लोग भावुकता के कारण या किसी गलत धारणा के कारण ऐसे सोच लेते हैं कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, हमें भी भाव मिल रहे हैं, परंतु सही संबंध ज्ञान स्थापित किए बिना हम शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने इतने लंबे लंबे तात्पर्य लिखे हैं, हमारे आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं संबंध ज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए। सनातन गोस्वामी पाद को संबंध आचार्य कहते हैं, संबंध तत्व की विशेष रूप से व्याख्या उन्होंने की। तो ये संबंध तत्व यदि हम जान लें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से, तो फिर हमारी भक्ति में जो साधना है वो और सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ेगी। ये विराट रूप आदि यद्यपि हमारे भजन साधन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हमारे समझ के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम गलत साधन भजन ना करें और हमारा विश्वास और भी सुदृढ़ता से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप के ऊपर ही एकाग्रता से स्थिर रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न किसी के हैं? हाँ, माइक चले दीजिए। आज का विषय थोड़ा कठिन था ने, लेकिन भागवत है तो हमारा कर्तव्य है कहना, बताना जो है उसे बताना चाहिए। यदि हम सोचेंगे आज का विषय कठिन है तो दूसरा ही श्लोक कोई ले लेते हैं, फिर हम भागवत पढ़ेंगे कभी। दुनिया में हम इतना कष्ट लेते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, बौद्धिक कष्ट, तो ये बौद्धिक कष्ट भगवान की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए क्यों नहीं लें? यहाँ कई विद्यार्थी बैठे हैं आज भी, अपने किताबों को पढ़ने के लिए बुद्धि को कष्ट देना पड़ता है ना, काफी कष्ट देना पड़ता है, तो फिर भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए क्यों नहीं कष्ट लेना चाहिए थोड़ा बहुत। और इसीलिए श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं हमारे लिए बिजली घर के समान है, प्रकाश देते हैं, जिन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं उनको बहुत सरल बना के देते हैं श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, शरीर को हम देख सकते हैं, सुख शरीर को नहीं देख सकते, और भगवान की रूप भी समझना मुश्किल ही है। जैसे आप बोलते हैं अव्यक्त है, अग्रस्ता है, अश्रुत है, अवास्तव है, फिर भी उनकी मूर्ति को बनाते समय एक कौन सा रूप हम यहाँ पे लाते हैं, किसी ने उस रूप को न देखा है, न सुना है, न देख सकते हैं, फिर भी हम लोग मूर्ति बना सकते हैं।
इस श्लोक में जिस रूप की बात की गई है कि अदृष्टा इत्यादि, ये भगवान के विराट रूप, सूक्ष्म विराट रूप का वर्णन है यहाँ इस श्लोक में, 32वें श्लोक में, जिसकी चर्चा आज हो रही है। विराट रूप की चर्चा पिछले श्लोक में हुई, 31वें श्लोक में, और इस 32वें श्लोक में सूक्ष्म विराट रूप की चर्चा हो रही है। तो 31वें और 32वें श्लोक में विराट रूप की चर्चा है, और दोनों ही सूक्ष्म और स्थूल विराट रूप भौतिक है, तो ये भगवान नहीं है। और ये सूक्ष्म विराट रूप को भी हम देख नहीं सकते, और भगवान का दिव्य रूप है वो इससे भी सूक्ष्म है, वो तो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो फिर भी आध्यात्मिक आंखों से उसे देखा जा सकता है। इसलिए ऐसे महान भक्तों ने अपने साक्षात्कार के आधार पर उनके सुंदर रूप का, दिव्य रूप का वर्णन किया है। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, साथ साथ शास्त्रों में भी भगवान के दिव्य रूपों का वर्णन है विस्तार में। तो इनसे हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसे है। ये कोई काल्पनिक रूप नहीं है, न ही ये कोई ऐसा रूप है कि किसी उपन्यासकार ने कहीं एक जगह बैठ के अपने मन से विचार करके वर्णन किया हो, नहीं। ये आत्मसाक्षात्कारी ऋषि मुनियों ने, शुद्ध भक्तों ने अपने साक्षात्कार को व्यक्त किया है। साथ साथ समय समय पर भगवान अवतीर्ण होते हैं और उस समय उनकी प्रकट लीला में जो साधारण लोग होते हैं वो भी उनको देख सकते हैं। तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और सभी लोग उनको देख पाए। ऐसा नहीं है कि केवल आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़े हुए लोग देख पाए, सभी लोग देख पाए उनको, यहां तक भी दुष्ट लोग भी देख पाए। तो भगवान अपने आप को दर्शाते हैं, तो सभी लोगों ने देखा, अनेकों ने वर्णन किया है, तो ऐतिहासिक वर्णन है ये। तो इसलिए हम जान सकते हैं कि भगवान का रूप कैसे है। ये कोई काल्पनिक वर्णन नहीं है, ये सत्य है। तो शास्त्रों में है, महान भक्तों ने वर्णन किया है और स्वयं वो प्रकट हुए थे 5000 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या माइक क्या है?
दो प्रश्न है। एक तो वैष्णव के जो चार सिद्धांत है, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत और द्वैत, इसका मतलब क्या है?
हरे कृष्ण। एक प्रवचन काफी भारी हो गया, अब दूसरा भारी विषय लेंगे तो फिर कोई अगली बार भागवत क्लास पे नहीं आएंगे। ये तो काफी लंबा विषय है। ये चार वैष्णव संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि, इनके बीच में भेद बहुत सूक्ष्म है और विषय काफी लंबा है, इसलिए इसके बारे में आज यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इतना जानना पर्याप्त है आज के लिए कि अंतर थोड़ा बहुत हो सकता है सूक्ष्म रूप में, लेकिन मूल रूप से एकता ही है। केवल सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में इधर उधर अंतर पाया जाता है, लेकिन मूल भक्ति के पथ हैं। सब भगवान को एक व्यक्ति मानते हैं। दूसरी बात ये भी मानते हैं कि भगवान का शरीर दिव्य है, चिन्मय है, भौतिक नहीं है। वो ये सारे मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं या श्री विष्णु हैं। वो ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण या श्री विष्णु के प्रति शुद्ध भक्ति हमें करनी चाहिए, शुद्ध प्रेम। वो ये भी मानते हैं कि इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट कर हमें निराकार ब्रह्म लीन होना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, परंतु वैकुंठ लोक में जाके भगवान के दिव्य सान्निध्य को प्राप्त करना है विभिन्न वैकुंठ लोकों में। तो ये सारी चीजें हैं जो सारे वैष्णव संप्रदाय मानते हैं। केवल तात्विक या दार्शनिक थोड़े से दृष्टिकोण में, भाव में आदि अंतर है, लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। हम समस्त चारों वैष्णव संप्रदायों को पूरा सम्मान देते हैं और देना चाहिए, परंतु पथ पकड़ा है हमें, हमने चैतन्य महाप्रभु का, तो उस गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन अन्य वैष्णव संप्रदाय को पूरा सम्मान देते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी अपने गौड़ीय मठ में मायापुर में चार वैष्णव आचार्यों के मूर्तियों की स्थापना की मंदिर में, परिक्रमा करते करते वहां दिखाई पड़ते हैं, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में। ठीक है।
दूसरा प्रश्न,
हाँ,
अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं भगवान, वे बाद में अर्जुन डरते हैं और भगवान को बोलते कि आप ये रूप संग्रह कीजिए और अपना जो मूल रूप चतुर्भुज रूप वो दिखाए, इसे इच्छा करते हैं। लेकिन जो भक्तों को बोला कि वो श्याम सुंदर रूप देखना चाहिए, लेकिन अर्जुन इधर चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा कर रहे हैं।
चतुर्भुज उसके बाद द्विभुज। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है, तो जब वो भक्ति करते हैं तो उनको विराट रूप से क्या लेना देना। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, विराट रूप किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नवसुखी अवस्था में है, जिनको भगवान के दिव्य रूप की जो का ज्ञान नहीं है। तो अर्जुन तो भगवान के पार्षद हैं, तो भगवान से ऐसा क्यों मांगेंगे वो? प्रभुपाद जी समझाते हैं, वो हमारे लिए मांगते हैं ताकि हम जान लें कि विराट रूप क्या चीज है और विराट रूप में और भगवान के दिव्य रूप में अंतर क्या है। और दूसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन चाहते थे कि आने वाले वर्षों में कोई भी ऐसे संशय न करे कि क्या श्री कृष्ण वास्तव में भगवान थे, तो उन्होंने विराट रूप दिखलाया उनसे। क्योंकि भगवान या कोई अवतार है इसका प्रमाण क्या है? पहले तो शास्त्र में वर्णित होने चाहिए, ऐसे अनेक लक्षण होने चाहिए, उनमें से एक है कि विराट रूप दिखाना चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि ये भगवान है। तो अर्जुन आने वाले पीढ़ियों के लिए ये साबित कराना चाहते थे कि श्री कृष्ण ही भगवान है, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया अपने विराट रूप को दिखाने के लिए। ठीक है, अर्जुन एक निमित्त है, अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही परिचय हम सबको करा दिया है। ठीक है, प्रश्न ये है कि जो अर्जुन ने विश्व रूप देखा युद्ध भूमि पर और जो कि दुर्योधन ने देखा, वो भी क्या अशाश्वत भौतिक रूप है या उनका भी क्या शाश्वत अस्तित्व है? तो अभी आप उत्तर दीजिए। अर्जुन ने जो विराट रूप देखा अशाश्वत है, निश्चित ही वो भी भौतिक है, क्योंकि दोनों ही विराट रूपों में अर्जुन ने क्या देखा और दुर्योधन ने क्या देखा? सारे भौतिक सृष्टि को ही देखा, इसके विभिन्न देवताओं को देखा, जितने भी यहां अस्तित्व हैं इस सब को देखा। तो विराट रूप ये एक भौतिक रूप है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, कोई अंतर नहीं, वही बात। विश्व मतलब सारा विश्व ब्रह्मांड का रूप, और विराट मतलब बहुत बड़ा है, इसलिए बात एक ही है। विराट रूप और विश्व रूप में कोई अंतर नहीं है। हाँ, माइक वहां पास करते समय माइक को बंद मत कीजिए, इसे चालू रहने दीजिए।
हरे कृष्ण। इस प्रकार के लोग स्थूल विश्व रूप की उपासना करते हैं, पर्यावरणकारी एनवायरमेंटलिस्ट, क्या वो कहलाएंगे जो स्थूल विश्व?
नहीं, खास करके उन लोगों को जो मानते हैं कि यही भगवान, यही विराट रूप है, जो अभी तक वो कल्पना करते हैं कुछ न कुछ भगवान की ओर जाते हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक रूप का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग योगी, विशेष करके जो योगी जन होते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ बताते हैं कि दो प्रकार के योगी होते हैं, एक जहां विराट रूप के संबंध में, एक प्रकार के योगी स्थूल रूप को मानते हैं, और दूसरे प्रकार के भी योगी होते हैं जो सूक्ष्म विराट रूप की उपासना करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। तो ये भी योगी जन होते हैं, उनके मन में ऐसे कल्पना करते हैं कि ये भगवान का रूप है, उसकी कल्पना करते हैं वो।
जो सूक्ष्म विराट रूप है, इसका इससे बना, ये क्या, ये भी क्या मन बुद्धि अहंकार इससे बना हुआ है?
जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, तो प्रश्न ये है कि ब्रह्मांड का सूक्ष्म विराट रूप भी किस चीज से बना हुआ है। वैसे इसके बारे में भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर काफी विस्तार में अपना वर्णन करते हैं। वैसे एक शरीर के लिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर के लिए हमारी जैसी एक आत्मा है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक हिरण्यगर्भ है जो समस्त आत्माएं हैं, वो ब्रह्मांड के लिए आत्मा बन गई, और फिर ये विराट रूप सूक्ष्म और स्थूल है। परंतु ये एक सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना हुआ है, इसका वर्णन नहीं करते हैं, ना सूत गोस्वामी करते हैं, ना आगे चल के सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में करते हैं। दूसरे स्कंद में भी यही बात आती है, और जबकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन दोनों ही विराट रूप स्थूल और सूक्ष्म विराट रूप को हमें नहीं मानना चाहिए, हमें केवल भगवान के दिव्य शरीर को मानना चाहिए। तो किन तत्वों से बना है ये केवल इतना बताइए, अव्यक्त है, और इसका अस्तित्व कैसे समझ सकते हैं, उपमा देने के लिए, एक दृष्टांत देने के लिए, कि जिस तरह से हमारे शरीर का दिव्य एक सूक्ष्म रूप है, उसी प्रकार से इस भौतिक सृष्टि का भी एक सूक्ष्म रूप है। इसलिए इस श्लोक के अंत में भी यही उदाहरण दिया गया है, ताकि हम समझ लें कि जैसे हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है, ब्रह्मांड का भी एक सूक्ष्म शरीर होता है, और तरह तरह के वर्णन किए हैं उस सूक्ष्म शरीर के, उसको देखा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो प्रकट नहीं होता इत्यादि। हाँ
हाँ,
दो प्रकार के उपासकों की,
सूक्ष्म और स्थूल विराट रूप की जो उपासना करते हैं, उनकी गति क्या होती है?
उनको तो अभी आप बताइए, भौतिक चीज की उपासना करने से गति क्या होगी? भौतिक ही होगी। आध्यात्मिक चीज की उपासना करने से गति आध्यात्मिक होगी, ठीक है? लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे ये एक क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे 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 वो भगवान की आध्यात्मिकता को समझ पाएंगे, इसलिए उनके लिए धीरे धीमी गति से आगे वो बढ़ेंगे, अनेक जन्म उनको लग जाएंगे, तो धीरे धीरे से इस बात को समझ पाएंगे कि हाँ, भगवान का भी एक दिव्य रूप है। हो सकता है पहले निराकार ब्रह्म तक पहुंचे, फिर परमात्मा तक पहुंचे, साक्षात्कार हो जाए धीरे धीरे से। हाँ, हरे कृष्ण।
बता रहे थे कि ये आर्चा विग्रह जो है वो शुद्ध भक्तों की रियलाइजेशन,
साक्षात्कार
उसका वर्णन है और शास्त्र के आधार पे है, लेकिन हम देखते हैं कि मतलब शिल्पी का क्या इसमें ये है? अगर वैसा है तो शास्त्र का वर्णन है तो सब विग्रह एक ही जैसे दिखना चाहिए ना, अलग अलग क्यों दिखते हैं? इसका मतलब है कि शिल्पी कुछ उसका, इसको कैसे समझें?
अवश्य शिल्पी का भी तो हाथ रहता है। शास्त्र में जो वर्णन है वो एक सामान्य वर्णन है, हालांकि भगवान कृष्ण का ही वर्णन है, परंतु बिल्कुल आंख थोड़े ऐसे होंगे कि थोड़े ऐसे होंगे, नाक वैसे होगा कि थोड़ा वैसे, वो अलग शिल्पी अपने अपने कल्पना से करेगा। और जिन शुद्ध भक्तों ने साक्षात्कार किया है भगवान का अपने हृदय में, उनके लिए भी जैसे जैसे उनके भाव होते हैं वैसे वैसे भगवान रूप धारण करते हैं। तो भगवान के रूप भिन्न क्यों हैं? क्योंकि भक्तों की भावनाएं भिन्न हैं। इसलिए चतुर्भुज रूप, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह सब भक्तों की भिन्न भिन्न भावनाओं के कारण भगवान के ऐसे रूप होते हैं। तो जब हम कृष्ण की उपासना ही करते हैं, कृष्ण की उपासना करते करते भी लोगों भक्तों की, शुद्ध भक्तों की भावनाएं थोड़ी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। वही कृष्ण को अनेक लोगों ने अनेक दृष्टि से देखा। जैसे जब मल्लयुद्ध के समय श्री कृष्ण और बलराम कंस के शहर में, नगरी में गए थे मथुरा में, तो जैसे ही वो वहां पे रंग में पहुंचे तो अलग अलग लोगों ने उनको अलग अलग दृष्टि से देखा। वसुदेव और देवकी की दृष्टि एक थी, जो मथुरा के निवासी थे उनकी दृष्टि अलग थी, चाणूर और मुष्टिक ने उनको अलग से देखा, उनको वज्र के रूप में देखा, कंस ने उनको साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, देवकी वसुदेव ने उनको अपने पुत्र के रूप में देखा। ऐसे अलग अलग लोगों ने अपने अपने भावना के अनुसार उनको अलग अलग रूप से देखा। तो ऐसे सूक्ष्म जो अंतर होते हैं अलग अलग विग्रहों में, वो दोनों कारणों से होते हैं। बाह्य कारण ये है कि शिल्पी ने कुछ एक दृष्टि से बनाया है, और दूसरी बात है भगवान उस रूप से प्रकट होना चाहते हैं। लेकिन जो भी शिल्पीकार भी बनाते हैं वो परंपरागत बनाते हैं, वो केवल अपने मानसिक चिंतन से कुछ यूं ही ऐसे बनाते नहीं है। यह भी एक विज्ञान है, मात्राएं वगैरह सब निर्धारित रहती हैं, उंगलियां कितनी लंबी होनी चाहिए हाथ के हिसाब से, नाक कितना बड़ा लंबा होना चाहिए, कान कैसे होने चाहिए, मापदंड सब होता है इसके लिए। लेकिन कभी कभी भगवान स्वयं ही ऐसे प्रकट हो जाते, जैसे जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हो गए, जब उनकी इच्छा होती है तो ऐसे भी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न। कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, क्या उसे असत्य मानना चाहिए? रूप तो विराट रूप तो अवश्य दिखाया, और ये विराट रूप है, परंतु ये आध्यात्मिक रूप नहीं है भगवान का, ये कहने की बात है। जो श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे वो अपने आध्यात्मिक रूप में खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो वो विराट रूप भौतिक था, वो विराट रूप आध्यात्मिक नहीं माना जाता है। ठीक है, हाँ।
हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बताया कि विराट रूप काल्पनिक है, इसे कल्पना करी जाती है, तो कल्पना किसने किया, भगवान ने या देवी देवताओं ने?
नहीं, ये जैसे यहाँ बताते हैं जीवों के संबंध में है, अर्थात जो लोगों ने कल्पना की है, लोगों की कल्पना के लिए, जो लोग भगवान के दिव्य रूप को नहीं जान सकते, ऐसे लोगों की सुविधा के लिए ऐसे एक कल्पना की जाती है। इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है, ये भगवान ने ऐसे बतलाया है कि देखो यदि तुम मेरे आध्यात्मिक रूप को नहीं जान सकते तो कम से कम तुम ऐसे रूप की चिंतन करो कि ये ब्रह्मलोक आदि मेरा सर है, पाताल लोक मेरे चरण हैं, और ये मेरे हड्डियां हैं, ये मेरा पेट है। तो ऐसे शास्त्रों में ही भगवान ने दिया है उन व्यक्तियों के चिंतन मनन के लिए जो कि अभी तक आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़े हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे।